आहा, सुबह के वक्त तो ब्रज की शोभा देखी बनती है। कितना सुंदर है ये ब्रजधाम और समय है 6 बजे। राधाम स्नात विभूषिताम व्रजपया हूताम सखीभी ही प्रगे तद्गेहे विहितान्न पाक रचनां कृष्णावशेषाशनाम कृष्णं बुद्धमवाप्त धेनु सदनं निर्वूढ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरे तांचाथ तंचाश्रय। आप अभी जावज में हैं, अपनी पलंग से उठकर आप दांत और मुंह धोकर पहले तो प्रातः कृत्य समापन कर लेते हो, फिर आप श्री गुरुदेवी और बाकी जो गुरुदेवियां हैं उन सब का और राधा रानी के बाह्यागार को साफ सुफ करके उसे खुशबूदार पानी से धो देते हो, फिर अपने लंबे लंबे केशों से उन्हें पोंछकर धूप जला देते हो, उसके बाद स्नान कर लेते हो और स्नान के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार से अपने आप को सजाते हो। ये वस्त्र और अलंकार सुंदर क्यों न होंगे भला, ये स्वामिनी के प्रसादी वस्त्र और अलंकार जो है। इसके बाद आप गुरुदेवी के बेडरूम में जाकर उसके जो गैलरी है, बालकनी है ना, तो वहाँ आप साफ करके फिर उनके प्रातः कृत्य की सेवा सामग्री सजाकर रख देते हो। फिर गुरुदेवी के चरणों को धीरे धीरे मसाज करके आप उन्हें जगा रहे हो। श्री गुरुदेवी जाग कर आपकी तरफ मुस्कुराती हैं और आप भी उन्हें प्रणाम करती हो। गुरुदेवी अपने प्रातः कृत्य आदि समापन कर ले तो आप उन्हें स्नान करा के फिर स्वामिनी के वस्त्र और अलंकार से सजाती हो। अब गुरुदेवी आगे आगे जा रही है, आप पीछे पीछे जा रही हो। सभी गुरु मंजरियों के साथ खुशी खुशी आप राधा रानी के कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर रही हो। वो देखिए श्री रूप मंजरी और बाकी सीनियर मंजरियां भी आ चुकी हैं। वे भी स्नान श्रृंगार करके कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और अब सभी वहाँ ब्रज धाम की खूबसूरती का दर्शन करते करते राधा जी के कंपाउंड में प्रवेश करते हो। देखिए ना, ये जो राधा रानी के भवन है वो कितनी मनी और रत्नों से जड़ा हुआ है। आहा, ये तो कोटि कोटि चांद की शोभा को भी हरा दे सकता है। देखिए तो राधा रानी का कंपाउंड इतना सुंदर है और विविध मणि और रत्नों से जड़ा हुआ है, ये तो करोड़ों करोड़ों चांद की शोभा को भी हरा देता है। वो सुनिए कितना सुंदर ध्वनि आ रहा है, कितना म्यूजिकल। हाँ, ये ध्वनि है कि दासियां दही को मथ रही हैं मक्खन बनाने के लिए, और फिर गेहूं को कूटने की ध्वनि आ रही है, उसके साथ उनके उनकी चूड़ियां भी बज रही हैं। तो ये सब मिलित होकर ऐसा लग रहा है जैसे कि समुन्दर का कल्लोल सुनाई दे रहा है। कंपाउंड के चारों तरफ देखिए एक सोने का दीवार है और पूरब और दक्षिण की तरफ बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं और ये गेट्स वज्र मणि से बने हुए हैं। उत्तर और पश्चिम की तरफ देखिए तो छोटे छोटे दो द्वार हैं। इस कंपाउंड के चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और इन वृक्षों में फूल खिले हुए हैं। फलों के भार से वृक्षों की शाखाएं बिल्कुल झुक गई हैं। छह ऋतुएं एक साथ मौजूद हैं यहाँ। आहा, वो देखिए, मंदार वृक्ष, पारिजात वृक्ष, संतान और हरिचंदन के पेड़ भी हैं यहाँ। इसीलिए तो उनसे जो पवन निकल कर आ रहा है वो इतना खुशबूदार है। जरा रुक के यहाँ फूलों का खुशबू तो ले लीजिए। इसी खुशबू से तो भौरे पागल हुए जा रहे हैं। फूलों पर कितने भौरे मंडरा रहे हैं और पेड़ों पर लताएं भी प्रफुल्लित होकर नाच रही हैं, जैसे कि बहुत ही उत्तम दर्जे की नर्तकी हो। और हर लता पे फूलों के बुके शोभा दे रहे हैं। पवन के मृदुल स्पर्श से ये फूल कैसे नाच रहे हैं, आप तो मुग्ध होकर देख रहे हो। अरे सिर्फ देखते क्या हो, वो भी सुनिए, कोयल कितने मधुर स्वर में बुला रही है। और अरे ये मोर, ये तो परमानंद से नाच रहे हैं। कंपाउंड के उत्तर की दिशा में देखिए, केले के वन है और इनमें केले ऐसे लदे हुए हैं जैसे कि सोने के बने हुए हो, इतने प्रकाशमान हैं। और यहाँ माधवी, मालती, स्वर्णज्योति और नवमल्लिका के कुंज हैं। इन्हीं कुंजों में श्रीमती और अनंगमंजरी के बाह्यागार हैं। इस कंपाउंड के चारों तरफ केले के वन, फूल वन और फलों के वन हैं। चारों द्वार से चार रास्ते आकर सेंटर पर मिले हैं। ये कंपाउंड चार पोर्शंस में डिवाइडेड है और टोटल इसमें 25 चौक हैं। पहला पोर्शन जटिला का है, इसमें 9 चौक हैं। एक तो गोलगोप का घर है, फिर जटिला का बेडरूम, दुर्मद का घर, आयान का घर, फिर आयान का ड्राइंग रूम, भंडार घर, रसोई घर, डाइनिंग रूम और आयान के दोस्तों को बैठाने के लिए एक ड्राइंग रूम अलग से। बाकी तीन पोर्शंस राधा रानी के खुद के हैं। पहले पोर्शन में 6 चौक हैं। कौन कौन से? एक तो श्यामला का घर है, फिर चंद्रशाला, सखियों का रेस्टिंग रूम, मंजरियों का घर, राधा रानी का डाइनिंग रूम और उनका ड्राइंग रूम। दूसरे पोर्शन में भी 6 चौक हैं। यहाँ राधा रानी और अनंग मंजरी का श्रृंगार रूम, राधा रानी का बेडरूम और अनंग मंजरी का बेडरूम, फिर एक भंडार घर है जहाँ सिर्फ मिठाइयाँ रखी जाती हैं। राधा रानी का अपना पर्सनल एक किचन भी है। इसके पास रत्नों का भंडार है और एक घर है जहाँ सिर्फ दूध रखे जाते हैं। राधा रानी के तीसरे पोर्शन में 4 चौक हैं। राधा रानी और अनंग मंजरी के ब्रशिंग करने का रूम, फिर उनके बेडिंग रूम्स या बाथरूम्स, और फिर एक घर है जो घी से भरा हुआ रहता है और यहाँ पर एक जू भी है। तो इन 4 पोर्शंस में टोटल 25 चौक हैं। राधा रानी जब बरसाने में रहती है तो वृषभानुपुर की शोभा भी याद रखने वाली है। बरसाने का जो कंपाउंड है वो तो इतना मनोरम है कि उसकी शोभा का हम क्या वर्णना करें। वहाँ तो ब्रह्मा जी खुद पर्वत के रूप में विराज करते हैं और इसी पर्वत पर कितना सुंदर सा ये कंपाउंड है। चारों तरफ मणि और माणिक से जड़ा हुआ एक सोने का वॉल है, दीवार है। और इस कॉम्प्लेक्स में चार दिक में चार गेट्स हैं और इन गेट्स के जो कबाट हैं वो वज्रमणि से निर्माण किया हुआ है। वो देखिए बरसाने में पूरब की दिशा में एक बहुत ही ऊंचा मेन गेट है। आहा, सूरज की रोशनी में ये कितना झलमल कर रहा है। इसके ऊपर सोने का कलश है, ध्वजा फहरा रहे हैं और कितने सुंदर सुंदर तोरण लटक रहे हैं। उत्तर के द्वार से थोड़ा सा मुड़ जाइए तो देखिए कि दक्षिण के द्वार तक एक सुंदर सा रास्ता है। बरसाने के कॉम्प्लेक्स में चार पोर्शंस हैं और टोटल 30 चौक हैं और इनके फ्लोर्स भी ढेर सारे जेम स्टोन्स से जड़ा हुआ है। पहले पोर्शन में तो 11 चौक हैं। यहाँ श्रीदाम का ड्राइंग रूम, फिर श्रीदाम का बेडरूम और एक स्पेशल ड्राइंग रूम जहाँ सिर्फ दोस्तों के लिए है। फिर श्रीदाम के ड्राइंग रूम के पास ही विश्वभानु महाराज का अपना ड्राइंग रूम है। फिर विश्वभानु राजा का बेडरूम है। ये बेडरूम तो बहुत सारे मनी और माणिक्य से भरा हुआ है और इस बेडरूम के चार कोने में चार रत्नों का घर है। इनमें स्वर्ण के कलश, ध्वजा और पताका लहरा रहे हैं। इसके पास ही विश्वभानु बाबा का डाइनिंग रूम है, सूर्य मंदिर है, रसोई घर है। यहाँ पर अन्न बनाए जाते हैं। यहाँ चुल्ली, वेदी, कुएं बहुत सुंदर सुंदर हैं। बहुत सारे भंडार हैं। फिर कीर्तिदा माँ का बेडरूम, फिर दाई माँ, दासियाँ, सेवकों के घर हैं। टोटल 11 चौक हैं। फिर जो दूसरा पोर्शन है वहाँ 7 चौक हैं। वहाँ क्या है, जब नंद महाराज आते हैं तो यहाँ ठहरते हैं, उनके लिए एक स्पेशल रेस्टिंग रूम है और बलदाव जी के लिए भी एक अलग रूम है। रोहिणी माँ के लिए एक रूम है, जशोदा माँ का बेडरूम वो स्पेशल है, अलग है, और फिर कन्हैया जी के लिए एक अलग रूम है। इसके पास ही राई का डाइनिंग रूम है, राधा रानी का अपना ड्राइंग रूम भी है। जब राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है ना, तब नंद महाराज आकर यहाँ रहते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए स्पेशल प्रबंध है। तीसरे पोर्शन में 8 चौक हैं। यहाँ अनंग मंजरी का बेडरूम, फिर ललिता और सखीगण के बेडरूम, राधा रानी का बेडरूम और इसके बाहर जो आंगन है वो क्रिस्टल से बने हुए पिलर्स हैं वहाँ पर और सोने की कुछ लकड़ियाँ भी हैं और इन लकड़ियों से मणि और मुक्ता की झूलर झूलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर झूले लटकाए हैं। जो बेडरूम्स है वहाँ मणिमय रत्न सिंहासन है। यहाँ पर बैठकर श्रीमती प्रेम और आनंद में विभोर होकर कन्हैया जी का दर्शन करती हैं। यहाँ दूध का एक अलग घर है, फिर एक रसोई घर स्पेशल है, वहाँ सिर्फ मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर भी सुंदर सुंदर चूल्हे, ऑल्टर्स, कुएं सब हैं। फिर तीसरे वहाँ पे जो पोर्शन है वहाँ 4 चौक है। यहाँ जितनी युथेश्वरिया हैं उनके घर हैं, चंद्रशाला और आयान और दुर्मद का भी घर है। जब वे अपने ससुर घर में आते हैं तो यहाँ पर रहते हैं। यहीं पे पश्चिम की तरफ एक जू भी है और राय और अनंग मंजरी के ब्रशिंग के लिए अलग रूम्स हैं, बाथरूम्स भी अलग हैं। तो इन चार पोर्शंस में टोटल 30 चौक हैं। अब आप गुरुदेवी की तरफ देखते हो और गुरुदेवी भी प्रसन्न होकर आपको आदेश देती हैं कि आप अभी सेवा में लगिए। तो आप राधा रानी का कमरा, आंगन सब सोने के झाड़ू से और खुशबूदार पानी से साफ करते हो। राधा रानी और अनंग मंजरी के जो बाथरूम्स हैं, वहाँ पर भी सोने के बेसिन में खुशबूदार पानी रखते हो, सुगंधी कोमल मट्टी रखते हो। जहाँ वे टूथब्रश करते हैं, वहाँ नरम आम के पत्ते का पाउडर रखते हो, खुशबूदार चूर्ण, सोने के टंग स्क्रेपर्स, सोने के झाड़ी में खुशबूदार पानी, एक पतला सा टॉवेल अर्थात जिसे हम कहते हैं गामछा, और सोने का वॉश बेसिन। दोनों की स्नान वेदी पर खुशबूदार तेल, तरह तरह के उबटन, स्नान करने के वस्त्र और खुशबूदार जल रखते हो। फिर श्रृंगार के मंडप में जाकर नीलांबर वस्त्र, फिर चंदन, केसर, कपूर, कुमकुम, अलता, सिंदूर सब अलग अलग स्वर्ण डिबिया में सज्जित करके रखते हो। कितने ही अलंकार सजाकर रखते हो, जैसे कि मणियों का हार, रत्नों की अंगूठियां, मणियों से बने कंगन, सोने की कंघी, मणि का आईना, और फिर परफ्यूम्स तरह तरह के, धूप धुआं, ये सब कुछ सजाकर रखते हो। फिर डाइनिंग हॉल में जाकर वहाँ आसन बिछाकर सोने की थाला, गिलास, सुवासित जल सब अपनी अपनी जगह रखते हो। ड्राइंग रूम में भी आसन बिछाकर रखते हो। ड्राइंग रूम में देखिए ना, वहाँ पर चार द्वार हैं और 8 खिड़कियाँ। यहाँ जो द्वार हैं, खिड़कियाँ हैं, उनके पल्ले मरकत मणि से जड़े हुए हैं, इंद्रा नील मणि के डिजाइन्स हैं, और कमरे के बीचों बीच तो राधा रानी बैठेंगे ना, और इसलिए वहाँ पे एक बहुत सुंदर पलंग है। ये पलंग 8 मणियों से बना हुआ है। इसमें नरम नरम गद्दे, तकिए, गोल गोल कुशंस सब अच्छे से आप सजाकर रखते हो। 8 सखियां बैठेंगी, इसलिए 8 दिशा में सोने के छोटे छोटे चौकियां सजाकर रखते हो। फिर और भी थोड़े छोटे छोटे टेबल्स हैं गोल गोल से, उन पर आप कर्पूर, चंदन, केसर की छोटी डिबियां भरकर रखते हो। तांबूल के पात्र, सोने की झाड़ी, चावर, पंखे सब सजाकर रखते हो। वो देखिए, अब ललिता सखियां आ रही हैं और उनकी साथ उनकी परिचारिकाएं भी हैं। हाँ, वो तो स्नान कर चुकी हैं, कितने अच्छे सज धज के अपने अपने कमरों से बाहर आ रही हैं। चलिए उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर सब मिलकर राधा जी के बेडरूम में जाते हैं। आहा, श्रीमती कितनी सुंदर लग रही हैं, नींद में है और सखी के चेहरे पर कितना सुंदर मुस्कान है। प्राण बल्लभ को देख रही होगी सपने। देखिए तो राधा जी कितनी सुंदर शैया पर लेटी हुई हैं। एक पलंग 8 मणियों से रचित है और इस पर शैया इतना सुंदर है कि लग रहा है दूध के थेन पर श्रीमती राधिका शयन कर रही हैं। इस पर सुंदर सुंदर तकिए हैं और साइड पिलोस भी हैं। शैया के ऊपर एक सुंदर सा चंद्रा तप है अर्थात कलरफुल अम्ब्रेला, और इससे रत्नों के झूलर लटक रहे हैं। चारों तरफ मणि के प्रदीप हैं और ये प्रदीप इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कि चंपक की कली हो। पलंग के चारों तरफ सोने की चौकियां हैं, उनमें मणि जड़ी हुई हैं। उन पर खुशबूदार जल है जो सोने की झाड़ी में रखा हुआ है, तांबूल का पत्र है और कुछ छोटे छोटे मणिमय डिबिया हैं जिनमें कपूर, चंदन, कुमकुम, केसर, कस्तूरी और सिंदूर रखे हुए हैं। इन चौकियों पर चौवर है, थुकदान है। सखियां राधा रानी का शोभा दर्शन करके एक दूसरे से कह रही हैं, देख सखी, राधा रानी का शैया जैसे कि दूध का सागर है जिस पर श्रीमती सो रही है, और श्रीमती बिल्कुल एक सोने की हमसिनी जैसी लग रही है। एक सखी कह रही है, आह सखी, ये शैया तो ऐसे लग रहा है जैसे कि श्री कृष्ण की लीला दूध के सागर में बदल गया हो, और उस लीला में श्री राधा मनोहंसिनी बनकर तैर रही है। सखियां एक दूसरे से ऐसे रस वार्तालाप करते हुए आनंद रस में भासमान है। बस इसी वक्त वो देखिए कौन आ रही है। ओहो, ये तो मुखड़ा है, जोर जोर से चिल्ला रही है, ओ राधे, ओ बिटिया, तुम कहाँ हो, कहाँ हो। ऐसे कहते कहते वो बेडरूम में आ जाती है और कहती है, बेटी सवेरा हो गया है, सब जाग गए हैं, आज रविवार है, भूल गई क्या, जल्दी उठो, नहा धोकर जाओ, सूर्य पूजा करो। अरे रे, वो तो कमरे में आ भी चुकी है। मुखड़ा की चिल्लाहट सुनकर विशाखा सखी जाग जाती है और आलस के साथ कहती है, सखी जल्दी उठ, जल्दी उठ। स्वामिनी जी मुखड़ा और विशाखा के शब्द सुनकर जाग जाती हैं, थोड़े थोड़े डोलने लगती हैं, जैसे कि सरोवर में कोई स्वर्ण हंसी सरोवर की लहरों से थोड़ी थोड़ी डोल रही हो, लेकिन फिर से वो नींद पी है। तब रति मंजरी उन्हें बुलाती है, स्वामिनी उठो उठो। तब श्रीमती उस अनमोल शैया से उठ बैठती है। अरे रे, ये क्या, मुखड़ा ने तो देख लिया है कि स्वामिनी जी के अंग पर पीले रंग का वसन है। वो सुनिए क्या कह रही है, कहती है, हाय हाय, सर्वनाश सर्वनाश, ए विशाखा, कल तो सांझ में मैंने कन्हैया के अंग पे जो पीले रंग का वसन देखा है वो अब तेरी सखी पे देख रही हूँ। हाय हाय, हमारे कुल तो बिल्कुल अकलंक है, लेकिन क्या ये व्यवहार है, कैसा बर्ताव करते हो तुम लोग, कहाँ थे कल रात को। विशाखा सखी चपल दृष्टि से वो देखती है, हाय हाय, सच है, सखी के वक्ष पर तो पीले वसन है। वो तो चमक जाती है, लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड सच में दाद देने वाला है। वो जल्दी से कहती है, बेवकूफ बुढ़िया, तुम तो स्वभाव से अंधी हो, देख नहीं रही खिड़की से किस तरह सूरज की रोशनी आ रही है। वैसे भी सखी का रंग स्वर्ण जैसा है और उसका नील वसन ही पीतांबर की जैसा दिख रहा है। ये तो सती शिरोमणि है, मेरी सखी के प्रति कोई कलंक का आरोप मत करना। मुखड़ा विशाखा की तरफ ताकती है और जैसे ही वो विशाखा की तरफ देखती है, आप बस एक पल में वो पीले वसन को खींच लेती हो और श्रीमती का नील दुपट्टा उन पे डाल देती हो। मुखड़ा फिर से राधा जी की तरफ देखती है, अरे सच, ये तो नील वस्त्र ही है, हाय हाय, तो मैं। और मुखड़ा लज्जित होकर चली जाती है। अब आप सब सखियां श्रीमती को घेर लेती हो। आहा, कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा लग रहा है जैसे कि राधा रानी चांद है और आप सब तारे की तरह उनके इर्द गिर्द बैठी हुई हो। सखियां आते ही बहुत हास परिहास का तरंग उठने लगा, रस बहने लगा शयन कमरे में। सखियां राधा जी के अंग पर रति विलास का निशान देखकर उनसे मजाक करना चाह रही थी, उनको छेड़ना चाह रही थी। स्वामिनी जी तो चतुर हैं, वो पहले से ही समझ गईं और मुस्कुराकर बोली, सखियां मैं एक बहुत विचित्र सपना देख रही थी। पता नहीं कहां से एक सांवला किशोर आ गया, हाथ में बांसुरी लिया हुआ था, पीतांबर पहना हुआ था और मोरपंख का मुकुट भी था। अचानक ललिता को कस से पकड़ लिया और उसके चुंबन आदि लेकर के वो उसने प्रेम विलास किया। ये सुनकर ललिता सखी तिनक कर बोली, राधे अपनी बात दूसरों के सर क्यों थोप रहे हो? उस प्रेम विलास का निशान तो तुम्हारे वक्ष और चेहरे पे दिख रहा है और ये काफी स्पष्ट है। तब एक दूसरी सखी ने कहा, सखियां तुम्हें श्रीमती के प्रति ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। कल वन में एक तोता आया था, बड़ा ढीठ था वो, इसके वक्ष को अनार का फल समझकर उसे काट लिया और इसके होठों को बिंब का फल समझकर चूम लिया। ये सुनकर राधा जी ने कहा, अच्छा अगर मेरी बात ऐसी है तो तुम लोगों पे निशान क्यों है? श्रीमती की बात सुनकर सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने में वहाँ श्यामा सखी आ जाती है। उसे बड़ी लालसा होती है राधा रानी की प्यार भरी रस भरी बातों को सुनने की। श्रीमती उल्लास के साथ उसे बाहों में भरकर अपने पास बिठा लेती है। ऐसे लग रहा है जैसे कि सूरज की सुनहरी किरण श्यामला को घेर लिया हो। श्रीमती प्यार से उसे कहती है जैसे कि पूरी रात का प्रेम विलास सब भूल चुकी है। वो कहती है, सखी श्यामली अभी अभी तुम्हारी बात सोच रही थी और तुम आ गई। हाय सखी, अगर इसी तरह से मेरा हर प्यास सफल हो जाता तो आज की सुबह ही मैं सुप्रभात लगता। ओ सुंदरी श्यामा, मेरी कन्हैया के लिए जो प्यास है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, जैसे कि कोई पेड़ बढ़ता रहता है। और ये सखियां भी ऐसी कि हमेशा कृष्ण कथा सुना सुनाकर सींचती रहती है, फिर भी इसमें फल क्यों नहीं आता? मुझे कृष्ण दर्शन क्यों नहीं होता? इसकी वजह क्या है? हाय कब मुझे इसका फल दिखाई देगा? पता नहीं कब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आएगी। स्वामिनी जी की बात सुनकर श्यामला हंस कर कहती है कि सखी राधे, तुम्हारा ये प्यास का झाड़ अगर अभी नहीं भी फला हो तो सोचो मत, बहुत जल्दी इसमें फल आ जाएगा। पर सुंदरी ये फल तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि तुम इसे हर रोज चख रही हो फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे देखा भी नहीं। श्याम सुंदर का गुलाबी रंग तो तुम पे चढ़ गया है, उसके गुलाबी रंग से ही तुम्हारी आंखें गुलाबी गुलाबी हो गई हैं, फिर भी तुम्हें कृष्ण जैसा फल दिखाई नहीं दे रहा है, यही आश्चर्य की बात है। ओ कमलमुखी, जिस फल को बार बार चखने से तुम्हारे होठों पे फुलके पड़ गए हैं, फिर भी तुमने उस फल का स्वाद नहीं लिया, बड़ा आश्चर्य है। श्रीमती कह रही है, कितनी मधुर बातें हैं ईश्वरी की। कह रही है, सखी श्यामी मेरी दिल की हालत तो नहीं समझ रही हो, सिर्फ मजाक करती जा रही हो। सखी रात्रि का समय था, आसमान में घन घटा छाया हुआ था और बस एक पल के लिए जैसे कोई प्रकाश दिखा, मेरी आँखों को झकझोर दिया और चला गया, तो इससे अंधेरा और दुगुना हो गया। उसी तरह श्याम सुंदर भी बस आधे क्षण के लिए दर्शन दिया और अदर्शन हो गया, और विरह की ज्वाला ने मेरे दिल को झकझोर दिया, मेरा दिल जल रहा है। आहा, श्यामला सखी सोच रही है और आप भी सोच रहे हो कि हाय श्रीमती की कृष्ण तृष्णा कितना अधिक है और अनुराग की मारी वो ऐसी दीवानी हो रही है। तो देखिए श्यामला सखी क्या कह रही है, कहती है, ओ सखी, जैसे सुबह नहाए बिना कोई भी काम नहीं किया जाता, उसी तरह तुम्हारे श्री मुख कमल से जो श्री कृष्ण कथा की अमृत गंगा बहती रहती है, उसमें नहीं स्नान किए तो मुझे किसी भी काम में मन नहीं लगता। ओ राधे, तुम अभी मुझे थोड़ा सा अपने रजनी विलास का माधुरी चखाओ। श्यामला की बातें सुनकर स्वामिनी जी कह रही हैं, ओ श्यामला, रात्रि का वक्त था, निकुंज निलय में मैं बैठी थी और तभी वो श्याम सुंदर बिजली की तरह वहाँ आया, उससे नया नील कांति बह रही थी और उस नील कांति में मैं स्नान कर रही थी, तभी पता नहीं कौन मुझे रंगमंच पर लेकर खड़ा कर दिया और मैंने वहाँ देखा कि असंख्य मदन देव नृत्य कर रहे हैं, सर से लेके पांव तक मैं कंदर्प राशि में स्नान कर रही हूँ। मैं इतनी व्याकुल हो गई थी सखी, मैं उन हजारों हजारों अनंग देव का नृत्य कला देखती देखती इतनी बेहोश हो गई कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसी नर्तकों के हाथों में समर्पण कर दिया। ओ श्यामा, उसके बाद क्या विचित्र नृत्य रंग शुरू हुआ। हाय, मैं सौ सौ बार भी कोशिश करूं तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। श्यामला कहती है, राधे, सच में आश्चर्य की बात है, तुम तो खुद इतनी उत्कृष्ट नर्तकी हो कि तुम करोड़ों करोड़ों कंदर्प देव को आश्चर्यचकित कर सकती हो और तुम अपने विलास के सागर में नटराज को भी नचा सकती हो। तुमने श्याम सुंदर जैसे नटराज को अपने प्रेम विलास में नचाया, पूरी रात तुमने नचाया और फिर भी कह रही हो कि तुमने सिर्फ नृत्य को देखा है, कौन विश्वास करेगा। श्रीमती ने कहा कि श्यामला, तुम जो कह रही हो वो भी सच है, मैं जो कह रही हूँ वो भी सच है, पर तुम्हें भी नहीं मालूम और मुझे भी नहीं मालूम कितनी सौ सौ अनुभूतियाँ मेरे दिल में हैं, मैं उसे किसी के पास प्रकाश नहीं कर सकती हूँ। बोलो सखी, ये क्या है, कोई इंद्रजाल है, सपना है कि मेरे दिल का कोई विभ्रम है, मुझे तो कुछ पता नहीं। राधा रानी कह रही है, देखो सखी, जैसे कि कोई बहुत प्यासा हो और वो सो जाए प्यास के मारे, अगर सपने में वो ढेर सारा ठंडा जल पी भी ले फिर भी वो प्यासा तो प्यासा ही रहता है, उसी तरह श्री कृष्ण के साथ रात्रि विलास करके भी मुझे उसका अभाव मालूम पड़ रहा है और मुझे सपने की तरह अविश्वसनीय ही लग रहा है। श्यामला हंसने लगती है और छेर के कहती है, सखी राधे, ये कोई सपना भी नहीं और इंद्रजाल भी नहीं, सच में तुम तो दीवानी हो गई हो। अरे श्याम सुंदर के अधरामृत तो ऐसा है कि दूर से ही कुलवधु अंध हो जाती है और उस अधर के शहद को तुमने बहुत ज्यादा पान कर लिया है और इतना उत्कृष्ट अधर सुधा अर्थात शहद, तुम अगर इतना ज्यादा पान करोगी तो दीवानी तो बनोगी ही ना। श्यामला सखी की ऐसी रस भरी बातें सुनकर और राधा जी की मीठी मीठी बातें सुनकर आपके दिल में तो सौ सौ आनंद की लहरें बहने लगती हैं। अरे वो क्या, मधुरिका आ गई। मधुरिका श्रीमती की प्रिय सखी है। सब सखियां पूछती हैं, मधुरिका कहाँ से आ रही हो, तो वो बताती है, मैं तो नंदालय से आ रही हूँ।
अच्छा,
तो बताओ नंदगांव में सब कुशल तो है? क्या हो रहा है वहाँ पे अभी?
मधुरिका कहती है,
राधे वहाँ सब दासियाँ दधि मंथन कर रही थी, तो जशोमती मैया ने उनसे कहा कि हौले हौले दही का मंथन करो, ऊंची आवाज न होने पाई। मेरा लल्ला गोचारण करके थक चुका है, अभी भी नींद कर रहा है। और इतने में श्याम सुंदर को देखने के लिए पौर्णमासी देवी नंदगांव में आ गई। और फिर उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर कैसे सो रहे हैं, कितना मनोहर लग रहे हैं। पौर्णमासी देवी को लग रहा था जैसे कि नंद भवन श्वेत द्वीप है, और ये जो पलंग है ना श्याम सुंदर का, ये तो बिल्कुल रत्नों से भरा हुआ है, उत्कृष्ट रत्न जो समुद्र मंथन के समय उठा था। और गोविंद का पलंग बिल्कुल प्रेम से सींचा हुआ, और उनकी शैया दूध के फेन जैसा सफेद, और ऐसे सुख शैया पे निद्रित हैं वही परमानंद रूप श्याम सुंदर। जशोदा मैया पौर्णमासी देवी को देखकर उल्लसित होकर उठ जाती है, खड़ी होकर कहती है, हे भगवती आइए आइए, मेरा सौभाग्य है सुबह सुबह आपका दर्शन मिला। हाँ, आप तो पूरे ब्रज की पूजनीय हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम। जशोदा मैया प्रणाम करती हैं और भगवती उनको बाहों में भर के आशीर्वाद करती हैं। फिर पूछती हैं, जशोदा तुम्हारे पति पुत्र गौवी सब कुशल तो हैं?
हाँ हाँ देवी, आपके आशीर्वाद से सभी कुशल हैं।
और फिर पौर्णमासी देवी को साथ लेकर वो गोविंद के बेडरूम में प्रवेश करती हैं। इतने में बलदेव के साथ और भी सखा जैसे भद्रसेन, स्तोक कृष्ण, गोभट्ट, सुबल, अर्जुन, श्रीदाम, सुदाम, दाम, उज्जवल, किंकिनी, सब श्री कृष्ण के सखा वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बुलाने लगते हैं, कन्हैया उठ जल्दी जाग, सुबह हो गया, दाऊजी तेरे लिए आंगन में इंतजार कर रहे हैं। सखा ऐसे बुलाते हैं तो मधु मंगल की निद्रा टूट जाती है, वह तो ही करके हंसते हंसते ऊंची आवाज में बुलाने लगते हैं, ओ कन्हैया उठ उठ जल्दी जल्दी, गौओं को लेकर जाना है ना। मधु मंगल की बातें सुनकर कन्हैया जाग जाते हैं और शैया को त्याग करने की कोशिश तो करते हैं पर सक्षम नहीं होते। तब जशोदा मैया आकर कन्हैया को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाती हुई वात्सल्य रस में बोलती है, बेटा उठ उठ, तेरा चेहरा देखने से माता को कितना आनंद होता है, तुझे नहीं देखे गौएं अपने बछड़ों को स्तन्यपान नहीं करा रही हैं, दूध नहीं पिला रही हैं, फिर भी तेरा बापू तुझे न जगाकर खुद ही गोठ में गए हैं। देख देख तेरे सखा सब आ गए हैं, चल चल उनके साथ तू भी गौओं को धोने के लिए चल जा। अरे ये क्या, आहा बलाई का नील वसन तेरे अंग पे क्यों? ये कहकर माँ नील वसन को धनिष्ठा के हाथ में दे देती है और फिर देखती है, ये क्या मेरी लल्ला के ऊपर कितने ही घाव का निशान, तो कहती है, देखिए ना भगवती, पौर्णमासी देवी से कहती है कि मेरी लल्ला का अंग तो कमल से भी ज्यादा सुकोमल है, पता नहीं रोज रोज ये दूसरे बालकों के साथ लड़ाई करता रहता है और ये दूसरे बच्चे भी इतने चंचल हैं,
रोज मेरे लल्ला के अंग पर घाव बना देते हैं। हाँ हाँ, कितनी मिट्टी लग गई है। हाय, पता नहीं मैं क्या करूँ। माता की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर देखिए ना कन्हैया जी की आंखें कैसे लज्जा से बंद हो रही हैं। और ये देख कर के मधुमंगल कह रहा है, मैया आपका लल्ला भी काफी चंचल है और ये बच्चे भी वैसे ही दुष्ट हैं, मानते ही नहीं और ये इसी तरह खेलते रहते हैं आपके लल्ला के साथ। कन्हैया जी अब माँ के सामने मधुर बाल भाव दिखाने लगे। वो उठ बैठे पलंग पर और अपने अंग को स्ट्रेच किया और जम्हाई भरी। शैया को त्याग करके वे पौर्णमासी देवी और माँ के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर माँ ने आज्ञा दिया तो दास आकर श्री कृष्ण को एक मणिमय आसन पे बिठा के उनका मुंह धुलाया। माँ ने अपने ही आंचल से कन्हैया जी के पूरे अंग पोंछने लगी और उनके केश को एक चूड़ा में बांध दिया। देखिए ना माँ कितने प्यार से गोरोचन लेकर के कन्हैया जी के ललाट पर रक्षा तिलक आंक रही है। फिर हार पहना रही है, माला मणिमय मुकुट सब पहना रही है। और फिर बलदाव जी कन्हैया जी के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो माँ कर्पूर की बत्ती से दोनों की आरती उतारती हैं। रोहिणी माँ अम्बा किलिम्बा सब मिलकर कन्हैया जी के बाल माधुरी का गीत गाने लगती हैं। और अब माँ सखाओं के साथ कन्हैया को भी मक्खन मिश्री का भोजन कराती है। वो देखिए कन्हैया जी दाऊ जी और बाकी सखाओं के साथ कैसे गौ दोहने के लिए गौशाला जा रहे हैं। हाँ, गौशाला जब जाते हैं ना तब श्याम सुंदर इतने मधुर लगते हैं कि बालकनी से ब्रज सुंदरियाँ वो देखती रहती हैं और देख करके बिल्कुल विमोहित हो जाती हैं। उनके प्रेम भरे नेत्र तो जैसे कमल की पंखुड़ियाँ हैं और वो ब्रज सुंदरियाँ अपने इस कमल जैसे पंखुड़ियों से उस प्रेम के देवता गोविंद की पूजा करते हैं। ब्राह्मण मधु मंगल बहुत ही मजाक करता रहता है तो वो सखाओं के साथ कन्हैया को भी हंसाता है। इस तरह हंसते मजाक करते सब गौशाला में प्रवेश करते हैं।